पहली अंजलि पहली चौपाई, पहला दोहा आपके नाम। इंद्र भी करते हैं गणपति जी, पहली बरखा आपके नाम। जिन चरणों से गंगा निकली, उन विष्णु जी को है प्रणाम। हे गुरुदेव जी मैं करता हूँ गंगा कथा ये आपके नाम।
बोलिए गंगा मैया की। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। कैसे ये अवतरण हुआ है सुन लो। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। कैसे ये अवतरण हुआ है सुन लो। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। अमर कथा है सुन लो। माँ गंगा भक्तों पतित पावनी माँ गंगा, जो युगों युगों से पर्वत राज हिमालय की बाहों में अटखेलियां करती भाग रही है। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती, कहीं पुष्प खिलाती कहीं अन्न उगाती, जन जन में जीवन का संचार करती। गोमुख से निकलकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करती हुई, कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर गंगा सागर से जा मिलती है। गंगा माता की महिमा कितनी निराली है। गंगा माँ भक्तों के पापों को धोकर उन्हें मुक्ति दिलाती है। इसके जल से ना जाने कितने ही रोग नष्ट हो जाते हैं। अंतिम घड़ियां गिनते हुए मनुष्य के मुख में गंगा जल की दो बूंदें डाल दी जाएं, तो उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा माँ युगों युगों से लगातार बहती चली जा रही है। ये ना कभी थकती है ना विश्राम करती है। ये तो सबकी झोलियां मुरादों से भरती है। गंगा माँ कहाँ से आई कैसे आई, इस पावन गंगा माँ के अवतरण की कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। बोलिए गंगा मैया की। पर्वत से तो सब बहती है, सब नदियों की यही कथा। पर शिव शंकर के केशों में किसको है स्थान मिला। केवल गंगा माँ ही है जो विष्णु चरण से आती है। गोमुख गंगोत्री से होकर हरिद्वार ये आती है। बूंद से जो मुक्ति देती, क्या कहना गंगा माँ का।
जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ, गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। गंगा माँ जिनके दिए हुए सुख हम सभी भोग रहे हैं, इस पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय सूर्यवंशियों को जाता है। सतयुग में महाराजा सगर हुए, उन्हीं के कुल की पांचवी पीढ़ी में महाराजा भागीरथ हुए, उन्हीं के तपोबल से गंगा माँ देवलोक से मृत्यु लोक में आई। सतयुग में सम्राट सगर थे सूर्य वंश कुल के राजा, उनके राज में बड़ी सुखी थी उनकी सारी ही प्रजा। उनकी पत्नियों पैदर भी और शैव्या ने शिव का ध्यान किया, शैव्या से तब हुआ समंजस, वैदर भी से मास पिंड हुआ, वैदर भी और राजा सगर को दुख इसका बड़ा मन में था। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ, हो गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। महाराजा सगर की वैदर भी और शैव्या नाम की दो रानियां थी, भगवान भोले शंकर की कृपा से रानी शैव्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था, और रानी वैदर्भी के शरीर से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए, तब एक दिन भोले शंकर स्वयं वहां पधारे और उस मांस पिंड को तलवार से 60,000 टुकड़ों में बांट दिया, और देखते ही देखते सब टुकड़ों में जीवन फूंक दिया। इस प्रकार राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक दिवस प्रकटे शिव शंकर, पिंड उन्होंने काट दिया, मांस पिंड को 60,000 टुकड़ों में था बांट दिया। दिया फिर जीवन सब में 60,000 पुत्र ऐसे हुए, महावीर थे वो सारे, असुरों के सब वे दुश्मन थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ कराऊं सगर के मन तब आया था, जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ, कि ये अमर कथा है सुन लो। भक्तों, महाराजा सगर ने मन से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाने का निश्चय किया। श्याम वर्ण का एक घोड़ा यज्ञ पशु के नाम पर छोड़ दिया गया। देवराज इंद्र घबराया, यदि इस राजा के सभी यज्ञ पूर्ण हो गए तो जरूर मेरा सिंहासन छिन जाएगा, ये यज्ञ पूरा न हो पाए इसकी योजना देवराज इंद्र ने बना डाली। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चोरी से पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। घट घट वन वन जाके देखा यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया,
एक बार मिल जाए हमको, किसने इसको चोरी किया। कपिल मुनि के आश्रम पर तब घोड़ा उनको बंधा मिला। कई अपशब्द कहे मुनिवर को, तप में ही मारा पीटा। तब मुनिवर ने क्रोधाग्नि से भस्म सभी को कर डाला। जपते जाना गंगे माँ, कहते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए जब सगर पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा वहां बंधा हुआ है और एक मुनि तप में लीन बैठा है। ये देखकर सगर पुत्रों ने ये मान लिया कि हो ना हो इसने ही इस घोड़े को चुराया है। क्रोध में उन्होंने ना जाने कैसे कैसे अपशब्द मुनिवर से कह डाले और मुनि का ध्यान भंग कर दिया। कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे। जैसे ही उनकी दृष्टि सगर के 60,000 पुत्रों पर पड़ी तो वे सब वहीं पर जलकर भस्म हो गए। महाराजा सगर को जब ये सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए हैं, महाराजा सगर और सारे राज्य के लोग शोक में डूब गए। सगर पुत्र असमंजस पहले से ही वन में तप करने जा चुका था। असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो राजा सगर को अत्यंत प्रिय था, उसे इस घटना का पता लगाने के लिए भेजा गया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। उसने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए सारी घटना कह सुनाई। अंशुमान के नेत्रों से अश्रु बह निकले। आंखों से अश्रु बरसाते अंशुमान जी रोते थे। काश पूर्वजों के पापों को हम असुमन से धोते थे। मैं ये पाप पूर्वजों का भगवान कैसे धोऊंगा। आप ही मुनिवर रक्षा कीजिए, मैं आभारी होऊंगा। अंशुमान का रोते रोते हाल बुरा तब होने लगा। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, अंशुमान रो रहे हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मैं जानता हूं मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई है, जो आपका निरादर किया, आपकी तपस्या भंग की। परंतु आप तो दया के सागर हैं, उनकी भूल को क्षमा करें और मेरे पूर्वजों की इस श्राप से कैसे मुक्ति हो, इसका कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि अंशुमान की विनम्रता और प्रेम भरी बातें सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि देवलोक से गंगा धरती पर आ जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। तर जाएंगे पितर तुम्हारे, श्राप मुक्त हो जाएंगे। देवलोक से आप यदि गंगा धरती पर लाएंगे, विष्णु के चरणों से चलकर ब्रह्म कमंडल आई है, तब पुत्री ये देवलोक में ब्रह्मा की कहलाई है। पितर तुम्हारे तर जाएंगे, इसका जल जो इन्हें छू लेगा। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। गंगा प्रेमी भक्तों, कपिल मुनि ने अंशुमान से तब कहा कि हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे दादा का यज्ञ पशु है, जिसे इंद्र ने छल से मेरे यहां छिपा दिया। अब तुम इसे अपने साथ ले जाओ। घोड़े को साथ लेकर अंशुमान भारी हृदय से अपने नगर में लौट आए और महाराजा सगर को सारी बातें विस्तार से सुना दी। महाराजा सगर सारी बातें सुनकर दुख के सागर में डूब गए। उन्होंने किसी तरह से अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया और उसके पश्चात राजपाट छोड़कर कपिल मुनि के बताए हुए मार्ग पर वन में तपस्या करने हेतु चल पड़े। राज थमा के अंशुमान को सगर गए थे तब वन में। धरा पे गंगा मैं लाऊंगा, पितर तरेंगे पल भर में। सालों साल तप किया वे, पुण्य मगर ना कुछ पाए। काल ने उनको आन पछाड़ा, नहीं वे कुछ भी कर पाए। अंशुमान ने पुत्र दिलीप को राजपाट सब दे डाला। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। राजा सगर ने अपने पुत्रों के मोक्ष के लिए वन में जाकर गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया, परंतु वो गंगा को धरती पर नहीं ला सके और तप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। राजा सगर की मृत्यु की सूचना जैसे ही अंशुमान ने सुनी, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसने संकल्प किया कि अब मैं इस अधूरे कार्य को पूर्ण करूंगा, मैं अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाऊंगा। लेकिन अंशुमान जी धरती पर गंगा को नहीं ला सके और तप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी घनघोर तप किया, परंतु वो भी असफल रहे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह सगर की तीन पीढ़ियां समाप्त हो, परंतु गंगा धरती पर नहीं आई। उधर कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए सगर पुत्रों की राख ज्यों की त्यों पड़ी रही। अब दिलीप के पुत्र भागीरथ ने सोचा, हमारी तीन पीढ़ियां समाप्त हो गईं, परंतु गंगा धरती पर नहीं आई, इसका क्या कारण हो सकता है। भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो बुद्धि तीव्र हो जाती है। भागीरथ को ये विश्वास हो गया कि गंगा भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के बिना स्वर्ग से धरती पर कदापि नहीं आ सकती। इसलिए वो भगवान विष्णु की तपस्या करने हेतु वन को निकल पड़े। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ वन में तप करने आए, कठिन तपस्या करी उन्होंने, निर्बल वे तब हो आए। त्याग दिया फिर अन्न और जल भी, जीवित थे वायु पी के, गंगा यदि मैं ला न सका तो क्या करना मुझको जी के। कई हजारों साल उन्होंने जाप किया तब विष्णु का, जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो, भक्तों यदि संकल्प दृढ़ है तो आत्मबल भी प्रबल होगा, आत्मबल प्रबल होगा तो तप में भी बल होगा। साधक साधना और साध्य जब एक सूत्र में बंध जाते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भागीरथ घनघोर तपस्वी थे, उनके तप बल और हठ ने एक दिन देवलोक भी हिला कर रख दिया। उनकी नासिका से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली और देवलोक जा पहुंची। उसकी आंच से सारा देवलोक झुलसने लगा। देवता घबरा गए कि ये ज्वाला जहां से निकल रही थी, सारे देवता उसी तरफ देखने लग गए। विष्णु जी के तप में है मगन एक साधु, हरि का जाप करे। दुबली पतली काया उसकी हर समय भजन में लीन रहे। तन पर हो जैसे मांस नहीं, अस्थि ही अस्थि दिखती है। एक ज्योत निकल के नासिका से चहुं ओर ही देखो बिखरती है। भागीरथ की नासिका से निकलती हुई उस ज्वाला को देखकर देवताओं ने सोचा कि यदि इसे रोका न गया तो भारी प्रलय हो जाएगी। ऐसा विचार करके सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनकर उन्हें धीरज बंधाया। प्रभु स्वयं एक तेज पुंज में प्रविष्ट होकर भागीरथ के पास प्रकट हुए। उस समय हिमालय का दृश्य अत्यंत ही अलौकिक हो उठा। जंगल में मंगल हो जूं कुछ ऐसा लगा, हिमालय में हरि ही आप प्रकट आए। वन बीच के एक देवालय में विष
विष्णु जी का तेज भागीरथ सहन कहाँ कर सकते थे। हाथों पे रख के हाथ वो दोनों अपने नयन छिपाते थे। तभी हुई आकाशवाणी, रूप ये देखो नारायण का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। भागीरथ ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उस तेज पुंज को सहन न कर सके और भागीरथ ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भागीरथ, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय साकार तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं। ये सत्य है, अपनी आंखें खोलो और हे भागीरथ भगवान विष्णु के दर्शन करो। भागीरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मारे खुशी की आंखों से आंसू बहने लगे। गदगद हृदय से भागीरथ श्री विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। कैसे देखूं रूप आपका, आप हो दाता मैं पापी। सारे जग के आप हो पालक, प्रभु तुम ही अंतर्यामी। आपके चरणों में भगवन में यही निवेदन करता हूँ। गंगा दे दो इस धरती को, यही मैं विनती करता हूँ। मेरे पितर सब तर जाएंगे, काज ये होगा पुण्य का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। गंगा प्रेमी बंधु, भागीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सूर्य वंश की तीन पीढ़ियां तप करते करते समाप्त हो गई। मेरे 60,000 पितरों को कपिल मुनि की श्राप ज्वाला ने जलाकर भस्म कर दिया है। उनकी राख का ढेर आज भी वहीं पड़ा हुआ है। जब तक गंगा माँ का पावन जल उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, वे श्राप से मुक्त नहीं होंगे। भगवान मुझ पर दया कीजिए, देवलोक से पावन गंगा को धरती पर उतारिए। इसमें मेरा ही नहीं, सारे संसार का भला हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले, एवमस्तु। हे तपस्वी, तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गंगा तुम्हारे साथ धरती पर अवश्य जाएगी। किंतु गंगा जगत पिता ब्रह्मा की कन्या भी हैं, इसलिए उनकी सहमति अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही तुम्हें भगवान भोले शंकर को भी मनाना होगा, क्योंकि गंगा का प्रचंड वेग वे ही धारण कर सकते हैं। ये कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की साधना की। इस पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर ये बोले, मैं तुमसे प्रसन्न बड़ा हूं, तुम जो मांगो सो पाओगे। इच्छित वर मैं तुमको दूंगा, खाली हाथ न जाओगे। गंगा
गंगा प्रेमी बंधुओं, भागीरथ ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और करबद्ध होकर उनसे ये बोले कि यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके द्वार से खाली हाथ न जाऊं, तो गंगा जी को मृत्यु लोक में ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने सारी बात जानकर प्रसन्नता से अपनी सहमति दे दी और बोले, गंगा मैं तुमको देता हूँ, बस इतना ही रखना याद। गंगा को मैली ना करना, जल करना तुम ना बर्बाद। मारे खुशी के भीग गया था, गला ही तब भागीरथ था। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा प्रेमी बंधुओं, ब्रह्मा जी की सहमति मिल जाने के पश्चात भागीरथ ने भगवान भोले शंकर का ध्यान लगाना प्रारंभ किया। त्रिपुरारी भोले भंडारी, आशुतोष है शिव शंकर। तुम दाता हो, जगदीश्वर हो, सदा से देते हो शुभ वर। हे कैलाशी मरघटवासी, उमापति है शैलपति। अभयंकर हो, प्रलयंकर हो, करो कृपा है जगतपति। मेरा भी उद्धार करो, शिव भला हो करते दुनिया का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ जो सारे जग के हितैषी हैं, भागीरथ का आश्रय जानकर उन्होंने उसे आश्वासन दिया, जग कल्याण के लिए यदि गंगा धरती पर जा रही है तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। भोलेनाथ ने भागीरथ से ये कहा, तुम जाके कह दो गंगा से, छोड़ स्वर्ग अब आ जाए। शिव शंभु स्वागत में खड़े हैं, अपनी जटाएं बिखराए। जितना रौद्र रूप है उसका, उसी वेग को देखेंगे। कोई भी जिसे रोक न पाया, उसे केश ये रोकेंगे। इतिहास ये साक्षी रहेगा, अद्भुत अमर इस संगम का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। हो गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। भोले बाबा की सहमति मिल जाने के पश्चात अब भागीरथ ने विचार किया कि भगवान विष्णु को बताया जाए कि ब्रह्मा जी और भोले शंकर दोनों ही मान गए हैं, अब गंगा का आगमन होना चाहिए। महान कार्य संघर्ष भरा होता है, महान कार्य ऐसे संभव नहीं होते। बड़े ही संघर्ष के बाद ये कार्य संभव हो पाते हैं। तभी तो ऐसे कार्यों को युगों युगों तक याद किया जाता है। यहाँ भागीरथ विचार कर रहे हैं और वहाँ देवलोक में विष्णु और गंगा जी का वार्तालाप चल रहा है। विष्णु जी गंगा जी को मृत्यु लोक जाने के लिए कह रहे हैं, किंतु गंगा है कि देवलोक छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। विष्णु बोले, तुमको गंगा धरा पे अब जाना होगा, भागीरथ के पितरों को अब तुम्हें ही जिलाना होगा। बोली गंगा के हे स्वामी, मुझे मृत्यु लोक ना भेजो, अपने ही चरणों में राखो, बस यहीं पे रहने दो। मृत्यु लोक में ग्रास बनूंगी मैं भी जाके छल बल का, जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। विष्णु जी बोले, हे गंगे, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को मैं जानता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि त्रेता युग में राम अवतार लेकर मृत्यु लोक में मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। गंगा, तुम त्रिलोक शोक नाशिनी हो, पतित पावनी, महाशक्ति, करुणामयी हो। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, याचक को द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा भक्त भागीरथ ना जाने कब से खड़ा है, जाओ और उसे दर्शन दो। मीलों दूर से चल के आया भागीरथ तुम्हें लेने को, घोर तपस्या की है उसने देवी गंगा तुम्हें पाने को। वर दिया है मैंने उसको, गंगा तुमको मैं दूंगा, ब्रह्मा और शंकर को बोलो वरना क्या उत्तर दूंगा। पूरा उसका कर दो मनोरथ, काम ये होगा पुण्य का। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। हो गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। भगवान विष्णु बोले, हे गंगा, इस समय सारा देवलोक भागीरथ के साथ है। भागीरथ अपना ही नहीं सारे संसार का कल्याण चाहता है। ये सारा जग हमारी ही रचना है और हम इस सृष्टि का कल्याण चाहते हैं। गंगे, तुम्हारे जल में इतनी शक्ति है कि सृष्टि का कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब विष्णु जी की बात गंगा जी को समझ में आई तो वो मान गई और भागीरथ को दर्शन देने के लिए प्रकट हुई। जिनके दर्शन के लिए सूर्यवंश की कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, भागीरथ के जीवन के कितने ही वर्ष तप में चले गए, आज उसी गंगा माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर भागीरथ का रोम रोम पुलकित हो गया। मारे प्रसन्नता के अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे थे। माँ गंगा ने भागीरथ को ढाढ़स बंधाया और मृत्यु लोक में आने के लिए सहमति प्रदान की, किंतु भागीरथ से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। मृत्यु लोक मुझे क्यों ले जाते कदम कदम पे झूठ वहाँ। लालच मोह कपट की छाया धर्म की होती लूट वहाँ। सारे ही पापी हो जहाँ कब तक पाप मैं धोऊंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा मैं मैली हो जाऊंगी। कहो मेरे इन प्रश्नों का है पास तुम्हारे उत्तर क्या। जपते जाना गंगे माँ रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। कथा प्रेमी बंधुओं गंगा जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भागीरथ ने कहा देवी गंगा जिन्होंने लोक परलोक सुख संपत्ति यश कीर्ति और स्त्री पुत्र सबका त्याग कर दिया है जो सांसारिक धनों और वैभव से दूर हो चुके हैं जिनके हृदय में प्रभु का निवास है ऐसे व्यक्ति संसार से परे होते हैं। हे गंगे माँ ऐसे साधु संतों के स्पर्श से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भागीरथ के उत्तर से माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई उन्हें बड़ा संतोष हुआ। परंतु गंगा जी के हृदय में एक शंका और उभर कर आई। उन्होंने भागीरथ से कहा वेग है मेरा तेज बड़ा कोई ना इसके साथ चला। मैं उतरूंगी धरती पर तो धस जाएगी सारी धरा। वेग को मेरे जो रोकेगा किसमें इतनी है शक्ति। मैं पाताल चली ना जाऊं मन में चिंता है इतनी। मेरी इन सारी चिंताओं का हल कोई करेगा क्या। जपते जाना गंगे माँ रटते जाना गंगे माँ। गंगा की ये अमर कथा है सुन लो। गंगा जी की बात सुनकर भागीरथ ने कहा हे माँ गंगे आदि देव भोले शंकर करुणा सागर हैं जग के हितैषी और जग के संचालक हैं। उनका रौद्र रूप महाप्रलय को भी रोक सकता है। जग का संहार उन्हीं का प्रलयंकारी रूप करता है। केवल वही आपके वेग को धारण करेंगे। गंगा को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व था। बोली मैं शिव के साथ पाताल में चली जाऊंगी। शिव भला मेरे वेग को क्या संभालेंगे। भागीरथ ने कहा नहीं माँ गंगे जिनकी माया का पार ये जग भी नहीं पा सकता। जिनकी शक्ति और महिमा को भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और सारा देवलोक जानता है वो महादेव आपकी तेज धारा को अवश्य धारण कर लेंगे। उधर देवलोक में हलचल मची हुई है कि गंगा देवलोक से मृत्यु लोक में जा रही है। जैसे गांव के लोग बेटी की विदाई के समय एकत्रित हो जाते हैं वैसे ही देवलोक में सारे देवी देवता एकत्रित हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गंगा आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी विदाई करूंगा। तुम फिर से जल बनकर मेरे कमंडल में समा जाओ। गंगा ने एक बार सारे देवलोक को निहारा सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया देव स्त्रियों से गले मिली और जल बनकर ब्रह्म कमंडल में समा गई और इधर हिमालय की पावन पवित्र धरती पर भागीरथ ने भगवान विष्णु शिव शंकर और ब्रह्मा जी को नमन किया और गंगा जी का आवाहन प्रारंभ किया।
सुर सरी माँ वेग गामिनी तुमको है मेरा नमन, आपसे पावन बनेगा ये मेरा भारत वतन। श्री हरि के चरणों से माँ इस धरा पे आ भी जा, तू मेरी पूजा लगन को गंगा माँ अपना भी जा। शक्ति रूपा मात गंगा कहता हूँ सुस्वागतम, पाप नाशिनी मैया तुझको सैकड़ों मेरे नमन, सैकड़ों मेरे नमन, सैकड़ों मेरे नमन।
भागीरथ के आवाहन पर ब्रह्मा जी ने कमंडल को उड़ेला, विष्णुपति सुरसरी गंगा देवलोक से मृत्यु लोक की तरफ बढ़ने लगी। प्रचंड जलधारा हर हराती हुई तीव्र गति से धरा की ओर बढ़ रही है, आकाश पर शोर हो रहा है, सारा देवलोक आकाश में खड़े होकर ये दृश्य देख रहा है। सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक सुंदर युवती जल धारा के रूप में किलोल करती हुई चली आ रही है। इधर कैलाश पर भोले शंकर रौद्र रूप में अपनी जटाओं को फैलाए हुए खड़े हैं, हिमालय पर खड़े भागीरथ ये सारा दृश्य देख रहे हैं। चहु और उथल पुथल मची हुई है, लगता है जैसे प्रलय आने वाली हो। देखिए आज गंगा मैया का अवतरण हो रहा है, बोलिए गंगा मैया की।
Thank you.
गंगा के प्रचंड वेग और प्रलय जैसी जल धारा को देखकर देवों के देव महादेव समझ गए कि गंगा अभी भी अभिमान से भरी हुई है। गंगा के इस अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने विकराल रूप देकर अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। गंगा वर्षों तक उन्हीं जटाओं में घूमती रही, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। गंगा को अपनी शक्ति और प्रचंड जलधारा पर जितना घमंड था, भोलेनाथ ने उस गर्व को चूर चूर कर दिया। इधर भागीरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने भोले की आराधना की तो शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं को समेटा और एक बूंद आकाश की ओर, एक बूंद पाताल की ओर और एक बूंद भागीरथ को दे दी। भागीरथ वो एक बूंद गंगा लेकर चल पड़े। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम आया, जिसे गंगा की तेज धारा ने बहा लिया। जहनु ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने अंजलि में गंगा जल भरा और उसे पी गई। थोड़ा आगे जाने के पश्चात जब भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा दिखाई नहीं दी। तब भागीरथ ने व्याकुल होकर जहनु ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या आपने पतित पावनी माँ गंगा को कहीं देखा है? तब जहनु ऋषि ने भागीरथ को सारी बात बता दी। भागीरथ ने जब सारा वृतांत सुना तो व्याकुल होकर वे ऋषि के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे भगवान, माँ गंगा की इस भूल को क्षमा प्रदान कीजिए और मुझे जन कल्याण हेतु गंगा को अपने साथ लेकर जाने दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। संतों का तो कर्म एक है, जन कल्याण वो करते हैं। जन कल्याण के रास्ते में ना कभी वो बाधा बनते हैं। तेज वेग को लेकर गंगा स्वर्ग लोक से आई है। बुझी हुई सांसों के मैया दीप जलाने आई है। खोल दिया तब जहनु ऋषि ने खुद ही गंगा का रास्ता। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। हो गंगा की ये अमर कथा है, सुन लो। कथा प्रेमी बंधुओं, ऋषि जहनु को भागीरथ पर दया आ गई। ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़कर गंगा को बाहर निकाला। गंगा ने मुनिवर को नमन किया। मुनि श्रेष्ठ ने गंगा को अपनी पुत्री बना लिया। इसीलिए भक्तों, माँ गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। भागीरथ गंगा को लेकर हरिद्वार पहुंचे। ये वही जगह है जहां माँ गंगा का प्रथम आगमन हुआ। हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम का स्थान हरि के द्वार जाने की प्रथम सीढ़ी है। इसी जगह पर सागर मंथन के समय अमृत कलश से कुछ बूंदें निकलकर यहां गिर पड़ी थी। कहते हैं यहां स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप ताप मिट जाते हैं और 84 लाख योनियों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, भागीरथ इसी तरह चलते रहे और मां गंगा भागीरथ के पीछे पीछे आती गई।
शिव के जटा में लहराई फिर गोमुख गंगोत्री आई, ऋषिकेश से हरिद्वार में फिर प्रयाग आ लहराई। शिव जी की काशी से पाटली पुत्र गंगा माँ आई, कपिल मुनि के आश्रम पहुंची तो भागीरथ कहलाई। आके यहाँ उद्धार किया भागीरथ के सब पितरों का, जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है सुन लो,
राज ऋषि भागीरथ पवन वेग से चलते गए और गंगा उनके पीछे पीछे आती गई। एक एक करके सारे देश पवित्र होते चले गए। चलते चलते गंगा माँ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्र राख का ढेर बने पड़े हुए थे। गंगा जी ने राख बने उन पुत्रों को अपने जल में समेट लिया। माना सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया था, उनके उद्धार का कोई और उपाय भी नहीं था, फिर भी गंगा माँ के पवित्र जल का स्पर्श पाते ही उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उन सभी का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए बंधुओं, माँ गंगा की जय। यहीं से रीति प्रचलित हुई के मृत्यु के पश्चात मनुष्य की अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित किया जाता है। गंगा में अस्थियों के विसर्जन से मृत प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। यही नहीं, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार माँ गंगा के चरणों में उनके आशीर्वाद से होते चले आ रहे हैं। इस प्रकार माँ गंगा सगर वंशजों का उद्धार करके गंगा सागर में प्रविष्ट होने लगी तो भागीरथ ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माँ गंगा का धन्यवाद किया और प्रेम पूर्वक विनती करी के हे पतित पावनी माँ गंगा, जिस प्रकार आपने मुझे पार लगाया है इसी प्रकार सारे जग का कल्याण आप करती रहीं। तो माँ गंगा प्रसन्न होकर ये बोली,
इस पावन धारा से अनगिनत तर जाएंगे, भागीरथ संसार के वासी गुण तेरे सदा गाएंगे। भागीरथी के साथ भागीरथ नाम तेरा भी अमर होगा। जपते जाना गंगे माँ, रटते जाना गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है सुन लो,
कथा प्रेमी बंधुओं, हमने माँ गंगा की महिमा के संबंध में जो कुछ भी बताया है उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मानव की अस्थियां गंगा जी का स्पर्श पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं, तो जो भक्त श्रद्धा विश्वास और नियम के साथ माँ गंगा का पूजन और गंगा जल का सेवन तथा माँ गंगा की पावन पवित्र कथा का सुमिरन करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। प्रभु के चरणों से निकलकर गंगा सबके उद्धार के लिए धरा पर आई है। हम सब मिलकर गंगा माँ को पवित्र और साफ रखने का संकल्प लें। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भागीरथ से वचन लिया था कि हे भागीरथ, ध्यान रखना गंगा मृत्यु लोक में मैली ना हो पाए। इसलिए भक्तों, आइए संकल्प लें कि गंगा माँ की पवित्रता पावनता और निर्मलता पर कोई आंच ना आने देंगे। इस कथा को कहते हुए यदि कोई भूल रह गई हो तो अज्ञानी समझकर हमें क्षमा कर दीजिए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।